खुदा दोस्त, दोस्त हमेशा साथ में रहते हैं, दोस्ती निभाते हैं और प्यार जितना हम बाबा के ट्रांसफर करते हैं उतनी दोस्ती हमारी पक्की होती है। बाबा ने परसों की मुरली में एक महावाक्य कहा था, आपको याद होगा, अंतिम समय बहुत आपते आएगी, उस समय मैं उन बच्चों को मदद करूंगा जो बहुत अच्छी सेवा मेरी करेंगे। मेरे मन में कई सालों से यह प्रश्न हमेशा रहता था कि अंतिम समय जो खतरनाक माहौल होगा उस समय कौन मदद करेगा, कैसे मदद करेगा। बाबा ने सामने से जवाब दिया, जो मेरी अच्छी सर्विस करेंगे उनकी कई आफतें आएंगी, मैं उनको मदद करने के लिए दौड़ूंगा, प्रॉमिस कर रहा है दिल से। सिर्फ सर्विस नहीं, जो अच्छी व्यक्तिगत रीति से माना, दिल से, जिगर से, स्नेह से, प्यार से। मुझे, मैं भोजन बना रहा था, 5 साल मैंने भोजन बनाया मधुबन में, तो 77 में बाबा से मैं मिल रहा था, बहनों के कनेक्शन की बात है इसलिए बता रहा हूं। हिस्ट्री हॉल में बाबा नीचे गद्दी पर बैठकर आए थे और हम मधुबन निवासी मिल रहे थे। March 3, 77 रात को 2 बजे मेरा नंबर बाबा के साथ मिलने के लिए लगा। बाबा ने दृष्टि दिया, फिर मुझे कहा, क्या स्वादिष्ट भोजन बनाते हो। मुझे 1 साल मधुबन में हुआ था, मैंने मन में सोचा स्वादिष्ट भोजन माना मिर्च मसाला चटपटा जैसे गुजराती लोग बनाते ना, मिर्च मसाला सारा बढ़िया, वो स्वादिष्ट भोजन होगा। बाबा ने कहा, जो स्नेह युक्त और योग युक्त भोजन होगा वही स्वादिष्ट भोजन कहलाएगा। स्नेह युक्त और योग युक्त, जिसमें योग का स्वाद नहीं वो स्वादिष्ट भोजन नहीं है, चाहे कितना भी चटपटा हो। बस वो मैंने पकड़ लिया बाबा का महावाक्य, और योग युक्त भोजन बनाने की अच्छी तरह से मैं ध्यान देता था, सेवा करता था, और जिससे बाबा ने योगी भव का वरदान ही जैसे कि दे दिया। उसके बाद बहुत बार बाबा ने योग के बारे में मुझे सर्टिफिकेट दिया, वरदान दिया। कहने का मतलब, योग की जो वाइब्रेशन हमारे भोजन में कण कण में भर जाते हैं, और वो जो भोजन खाता है उनके मनसा पर उसका वाइब्रेशन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बाबा कई बार कहते, गुरुवार के दिन मेरे पास में कितने भोग आते हैं, कितने भोग आएंगे बोलो भाई, कितने सेंटर हो गए उतने भोग आएंगे, ठीक है ना गीता बहन जी, कितने भोग सेंटर होंगे उतने भोग आएंगे। अभी सबसे पहले सवाल उठता है, कौन सा भोग मैं स्वीकार करूं, उसमें योग की पावर जास्ती है, चलो वो पहले स्वीकार करता हूं। नजदीक वाले को देखेगा भी नहीं, जिसमें योग की पावर जास्ती होगा बाबा उसको पहले स्वीकार करेगा। तो योग को योग क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं योग को योग बोलो, योग उल्टा क्या है, गयो, चले गयो ऊपर, यहां है नहीं, आप इधर है नहीं, बैठे हैं लेकिन आपका बुद्धि वहां है, चले गए यहां से। याद उल्टा क्या है, दया, याद करते हैं तो खुद पर दया करते हैं औरों पर भी दया करते हैं, नहीं तो दया नहीं करते हैं, रहम बेरहम अपने पर करते हैं। अभी सवाल ये उठता है कि ज्वाला स्वरूप योग, 4 बातें पूरी हो गई, अभी ज्वाला स्वरूप योग आखिर है क्या चीज, उसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। मेन बात इसमें दो बातों की आवश्यकता है, पूर्णतया दृढ़ता के साथ हमें बैठना है। योगाभ्यास के लिए दृढ़ता से बैठना है। मुझे अभी अमृत वेले या शाम के योगाभ्यास में ऐसी ज्वालामुखी स्थिति की अनुभूति करना ही है, इस तरह से दृढ़ता पूर्वक आपको बैठना है। दूसरी बात, जो योग की प्रक्रिया है उसमें फुल कॉन्सेंट्रेशन होना जरूरी है, 1% भी डिस्ट्रैक्शन न हो, 100% कॉन्सेंट्रेशन हमारा बाबा के छवि पर हो। उदाहरण देता हूं, एक पेपर है मेरे पास, पेपर को मुझे सूर्य की रोशनी में जलाना है, 10 दिन से रख रहा हूं नहीं जलता है, क्या करना होगा? लेंस लेता हूं, मैग्नीफाइंग लेंस, उससे क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें मैग्नीफाइंग लेंस पर पड़ती है और उस पर पड़ते ही पास होते ही बहुत तीक्ष्ण वो किरणें पड़ हो जाती है, लेजर किरणें की तरह, और इतनी शक्तिशाली किरणें एक ही पॉइंट पर जब केंद्रित होती हैं तो प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है और अग्नि का रूप ले लेती है और सेकंड में उसको पेपर को जला लेती है। ठीक है, ऐसा ही बाबा ज्ञान सूर्य है, बुद्धि रूपी लेंस, बहुत क्लीन हो, क्लियर हो, कोई भी डस्ट उस पर न हो, बहुत डिवाइन हो, बहुत प्योर हो, बहुत क्लीन हो, कोई व्यक्ति वैभव की याद न हो, ऐसा बहुत सुंदर मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं ना, उसके भी क्वालिटी मैग्नीफाइंग लेंस का जितना फोकल पॉइंट जास्ती होता है उतना वो पावरफुल होता है, फोकल पॉइंट जिसका जितना जास्ती होता है उतना वो पावरफुल कहलाता है। तो बुद्धि रूपी लेंस हमारा पावरफुल हो इसका मतलब बहुत प्योर हो, बहुत शुद्ध हो, बहुत क्लीन हो। तो बाबा जो ज्ञान सूर्य है, पूरी एकाग्रता से जब हम बाबा पर एक कॉन्सेंट्रेशन करते हैं तो किरणें बुद्धि रूपी लेंस से ट्रांसफर होती है, तो जैसे ही लेंस से ट्रांसफर होती है तो वो शक्तिशाली होती है, लेजर किरणें की तरह होती है, और ऐसी शक्तिशाली किरणें आत्मा पर एक ही बिंदु पर पड़ती है तो योग की अग्नि, प्रचंड योग की अग्नि पैदा होती है जिसको योग की अग्नि या योग की ज्वाला कहते हैं, और उसमें हमारे विकर्म पर जन्म जन्मांतर के भस्म हो जाते हैं। तो आवश्यकता है फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ योगाभ्यास करते हैं तभी योग की ज्वाला की अनुभूति उस ज्ञान सूर्य की तपत में आत्मा करती है और उसमें हमारे विकर्म भस्म होते हैं और एकदम आत्मा लाइट हो जाते हैं। एक तरफ लाइट अनुभव करेगी और दूसरी तरफ आत्मा की बैटरी बहुत चार्ज हो गई है, बहुत एनर्जी भरी पड़ी है, ऐसा अनुभव आप करेंगे। एकाग्रता का बहुत सुंदर एग्जाम्पल इसमें शास्त्रों में दिया है हमारा, ही कौन सा है बताओ? हमने जो योगाभ्यास में एकाग्रता हर कल्प अनुभव की उसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल शास्त्रों में है। एकलव्य का, अर्जुन का, द्रोणाचार्य जो उसके गुरु थे, अर्जुन और उसके सहपाठी उनको धनुर्विद्या सिखा रहे थे, धनुर्विद्या सिखाते थे। फिर एक दिन उन्होंने परीक्षा लेना चाही तो एक चिड़िया, एक पंछी, एक आर्टिफिशियल पंछी एक झाड़ पर, वृक्ष पर टांगा और उन्होंने कहा कि उसकी पुतली जो आंख है, आंख में जो पुतली है, आई बॉल है, ब्लैक बॉल है, आई बॉल, उस पर आपको तीर मारना है। फिर एक एक को बुला रहे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है बोलो, आओ एक एक नंबर एक आओ, क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, पंछी भी दिखाई दे रहा है, झाड़ भी दिखाई दे रहा है, आप भी दिखाई दे रहे हैं मुझे तो। अच्छा ठीक है, दूसरा आओ। हाँ, पंछी भी दिखाई दे रहा है, झाड़ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अर्जुन आओ, क्या दिखाई दे रहा है? कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा है, केवल वो काली बिंदी पंछी की आंख में है, बस वही नजर आ रही है और कुछ भी नजर, पंछी भी नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, बाण मारो। उसने सीधा बाण मारा और फुल पास मार्क लिए। तो ये हमारा गायन है कि हमारी जो आंख है, बुद्धि रूपी आंख, बाबा पर एकाग्र हो, वो बिंदी ही दिखाई दे, वो महाबिंदी ही दिखाई दे और बस हमारा वो संसार है बाबा, उसी पर पूरा एकाग्रता होगी तो अथाह शक्तियां आत्मा में भरती जाएगी, ज्वालामुखी स्थिति की अनुभूति होती जाएगी। ऐसी फुल कॉन्सेंट्रेशन योगाभ्यास में आवश्यकता है। तो ऐसा योगाभ्यास हमें करना है, क्योंकि आगे चलकर हमारी बुद्धि को खींचने वाली, बुद्धि पर वार करने वाली कई बातें आएगी जो हमारी बुद्धि को इधर उधर खींचेगी, लेकिन हलचल में रहते हुए अचल स्थिति, एकदम अचल अडोल स्थिति हमें अनुभव करने का अभ्यास अभी से ही करना जरूरी है। तब हम लास्ट पेपर में पास होंगे। लास्ट पेपर हमारा कौन सा होगा? वो तो गीता का सार है, गीता बहन भी वही सुनाती है। पेपर हमारा होगा, हमारा सबसे जस्ती प्यार किससे होता है? 24 घंटे साथ में रहता है, इसलिए सबसे जस्ती प्यार हमारा अपने देह से होता है। जो बहुत प्यारी चीज है उससे एक सेकंड में न्यारा होना और एक उसी सेकंड बाबा का प्यारा होना, ये हमारा अंतिम पेपर होगा। चाहे ये शरीर पानी में डूब रहा है या अग्नि में जल रहा है या धरती में दब रहा है या अर्थक्वेक में दब रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये तो क्या है? मैटर है, ये तो क्या है? मिट्टी है। एक सेकंड में न्यारा, उसी सेकंड बाबा का प्यारा, ये हमारा अंतिम पेपर होगा। हम योगी आत्माएं अपने संकल्प शक्ति के द्वारा योग शरीर छोड़ेंगे, शरीर से डिटैच होकर, बाबा से अटैच होकर हमारी बहुत स्थिति अच्छी तरह से होगी, पावरफुल, और इस आत्मा रूपी पंछी, इस देह रूपी डाल से उड़कर परमधाम में, घर में पहुंच गया है, बाबा के पास बैठ गया है। ये पेपर हमारा अंतिम होगा। वे माया को दुश्मन कहते हैं, क्यों दुश्मन कहते हैं माया को? क्यों क्या बिगाड़ा है उसने आपका? सारा दिन माया 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 करते रहते हैं, क्यों माया को दुश्मन क्यों कहते हैं? वो तो बाबा कहते हैं मेरी बेटी है, तुम्हारी बहन हो गई हो तो, फिर भी दुश्मन क्यों कहते हैं उसको? बोलो, दुश्मन। जो मन को दूषित करता है उसको दुश्मन कहते हैं। तो माया ने विकार का जहर मन में घोलकर मन को दूषित किया, या दुश्मन ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। वो बिल्ली हमारे पीछे लगे रहती है ना, क्यों पीछे लगे रहती है हमारे? बिल्ली कहते हैं ना माया को, क्यों बिल्ली कहते हैं? आपके घर में 5 साल से रहता हूं, घर का किराया नहीं देता हूं, बिल नहीं देता हूं, पर आपको लगा भाई ये जयपुर से अभी माउंट में जाना है, आप मुझे जाने देंगे? हमारा बिल दो पहले। तो 63 जन्मों के 63 मकान हमने उससे किराए के लिए बिल नहीं दिया, और अभी उसको पता चल गया है ऊपर जाने वाला है घर छोड़ के, अभी चलो मेरा बिल दो, नहीं ऐसा नहीं जाने दूंगी, इसलिए पीछे ही पड़ी है एकदम। क्या तुम्हारा बिल है? जो तुम्हारे पास देह का भान है, देह की प्रॉपर्टी है, देह के संस्कार है, वो मुझे वापस करो, ये छोड़ो, ले लो तुम, अच्छा जाओ टाटा जाओ, अभी मैं तुम्हारे पीछे नहीं जाऊंगा। तो जब समझते हैं काया तो आ जाती है, जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती है। इसलिए हमेशा हमें ज्योति समझना है, माया भाग जाती है। जंगल में शेर किसी को डरता नहीं है, एक ही चीज को डरता है, किसको डरता है? अग्नि को डरता है। तो इस मंदिर में, इस मकान में अगर आग जल रही है, आत्मा रूपी दीपक जल रहा है, तो माया दूर से भागेगी। और दिया नहीं होगा तो क्या होगा? दिया जलता नहीं होगा तो क्या होगा? ये बंगला भूत बंगला बन जाएगा। अंधेरा है ना, रोशनी नहीं है। तो जिनके मकान में हमेशा रोशनी रहती है, वही बाबा का नाम रोशन करेंगे, दूसरे नहीं कर सकते हैं। अगर रोशनी नहीं है मकान में तो क्या होगा? रो प्लस शनि, शनि रुलाने वाला आपके पीछे पड़ा है।
बीच में एक अनाउंसमेंट करती हूँ। पोरबंदर की माधुरी बहन यहाँ बैठी है क्या? आपकी ट्रेन छूटने वाली है, आपका इंतजार हो रहा है। लगता है भाई साहब की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है।
आपको पता है माया से कुश्ती कैसी होती है हमारी? बोलो। माया से युद्ध हमारा होता है ना, कैसा होता है युद्ध? बोलो बहने। बाबा कहते आप रूहानी योद्धे हो अभी, और बहुत जल्दी ही आप वर्ल्ड वेल नोन वॉरियर होंगे, विश्व प्रख्यात वॉरियर होंगे, विजयी घोषित होंगे। लेकिन अभी आप योद्धे हैं। युद्ध कैसा होता है हमारा माया के साथ? बोलो। नेगेटिव पॉजिटिव विचार आते तब। और भी कोई है? संस्कारों से देखो युद्ध कैसा होता है, वो अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप युद्ध में विजय होंगे, अगर नहीं होंगे तो माया धोखा देगी आपको। तो उसके साथ युद्ध कैसे होता है, बॉक्सिंग कैसे होती बताता हूं आपको। हैं विधिंद्र भाई? जब हम देह को बॉक्स समझते हैं बजाय आत्मा रूपी हीरा उसमें है, तो हीरे के बजाय बॉक्स समझते हैं, तो बॉक्सिंग शुरू हो जाती है। फाइटिंग, एक फाइटिंग होके गिरा देती है। और पांच उसके सेनानी होते हैं, काम को लोग मंका कहते आओ इसके खूब मालिश करो, अच्छी तरह से पिटाई करो खूब इसकी अच्छी तरह से। ये अभी मेरा कस्टमर था 2500 साल से, अभी मेरे दुकान छोड़ के शिव बाबा के दुकान पर जा रहा है, खूब इसकी मालिश करो अच्छी तरह से, खूब पिटाई करो। तो 500 उसके सेनानी खूब पिटाई करते हैं, बेहोश करते हैं, बेचारा बेहोश पड़ा है। बाबा ऊपर से देख रहा है, मेरा लाल माला माल था, सतयुगी राजा था, और एकदम देखो क्या हाल हो चुका है, कोई देखने वाला नहीं है। राजा महाराजा था और बेहोश पड़ा है बेचारा। दया का सागर ऊपर से आता है, संजीवनी बूटी लेकर, और फिर मुरली के द्वारा कहता है बच्चे तुम आत्मा हो, सुनो ये मानो थोड़ा मैं आत्मा हूं। इतना बेहोश है, उसको होश ही नहीं, मैं कौन हूं, आत्मा हूं, होश ही नहीं है, बेहोश है, तो खोलता ही नहीं, आंखें ही नहीं खोलता है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो देह हूं, कौन कहता मैं आत्मा हूं। दूसरे दिन आता है बाबा, फिर उसको ज्ञान देता है, संजीवनी सुनाता है, भाई मैं तुम्हारा बाप हूं, सत्यम शिवम सुंदरम हूं, सदा सत्य बोलने वाला हूं, तुम आत्मा हो। अच्छा मैं आत्मा हूं, अच्छा आत्मा हूं, अरे आत्मा ही नहीं महान आत्मा हो, अच्छा महान आत्मा हूं, अरे सर्वशक्तिमान की संतान हो, अच्छा सर्वशक्तिमान की संतान हूं। अभी इसी पोजीशन में स्थित होने के बाद वो दूर से माया देखती है, भाई ये तो अटेंशन में है, अभी मैं जाऊंगी तो दाल नहीं गल सकती है, कहते दूर से कहते टाटा टाटा मैं जा रही हूं, 2500 साल के लिए टाटा, मैं तुम्हारा दरवाजा खटखटाऊंगी बाद में 2500 साल के बाद, तब तक टाटा। इसलिए हमारी जो रूहानी मिलिट्री है, इसका पहला मार्शल ला है अटेंशन, प्लीज स्वयं पर अटेंशन दो प्लीज, कि आप कौन हो, आप आत्मा हो। जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा, क्योंकि बाबा से योग लगता है पाप खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। तो ऐसी पावरफुल स्थिति में हमें स्थित रहना है, धीरे धीरे योग की स्थिति हमारी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर होंगे, चैंपियन होंगे, उन्हों का योग का सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट होगा। वही योगी आत्माएं इस यूनिवर्सिटी में चमकेंगे, वही स्कॉलर बनेंगे, वही मेरिट में आएंगे, वही नंबर लेंगे। इसलिए योग का सब्जेक्ट हमारा फेवरेट सब्जेक्ट हो। अन्य तीन सब्जेक्ट उसके पूरक है, मेन सब्जेक्ट योग है। जितना ज्ञान समझते हैं उतना योग लगता है, जितनी धारणा करते हैं उतना योग करता है, जितनी सेवा करते हैं उतनी दुआएं लेते हैं, योग हमारा बढ़ता है। मेन है ही योग। तो योग के द्वारा ही आत्मा को हमें चमकाना है, जो भी आत्मा में अलाय है उसको मेल्ट करना है, तपाना है और एकदम कांचन प्योर सोना बनाना है। समझा? तो इसलिए बाबा कहते इस प्रकार का ज्वालामुखी योगाभ्यास हो। बार बार इस सीजन में बाबा ने 3-4 बार इशारा दिया कि अभी ज्वालामुखी योगाभ्यास हो, साधारण योगाभ्यास न हो। और बार बार जो ड्रिल कराते हैं बाबा, इतनी बड़ी सभा में ड्रिल कराते हैं, क्यों कराते हैं? भाई मुख से तो मैं बोल बोल के थक चुका हूं, तो 70 साल से बोल रहा हूं आत्मा समझो आत्मा समझो, नहीं मानते हैं। चलो इतनी 20,000 की सभा में बाबा ड्रिल करवा रहे हैं, अनुभव करवा रहे हैं। थोड़ा अनुभव करेंगे तो ये बार बार करेंगे, उसी भावना से बाबा हमारे ड्रिल करवाते हैं। तो बाबा इतना रहम दिल है, इतना सागर है, दया का सागर है बाबा के। जो इच्छा यही है बाबा की कि हर एक लाल माला माल हो जाए, खजानों से संपूर्ण हो जाए। खजाने कौन पाते हैं? खजाना, खो जाना तो खजाना मिलेगा, खो जाना नहीं आएगा। खुद में और खुदा में खजाना नहीं मिलेगा। खुद में और खुदा में खो जाना आता है तो खजाने आपके पास जमा हो जाएंगे। समझा? ये जमाना कैसा है? जमा होने ही नहीं देता आपका। आपके जो खजाने हैं ना, वो जमा ही नहीं होने देता है। होगा तो खत्म करेगा, ड्रेनेज करेगा, खत्म करेगा, इधर उधर बाह्य मुखी बनाएगा, और जो भी जमा हुए हैं वो खत्म कर देगा। जमाना ही ऐसा है। इसलिए जितना अंतर्मुखी होकर हम रहते हैं उतना हम स्वयं को भरपूर करते हैं। ठीक है? मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया, बातें क्लियर हो गई, और योग का भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट होगा, और अमृत वेले या शाम के समय ऐसा पावरफुल योग अभ्यास आप करेंगे ही, तभी आप बच्चों की जो सेवा करने हैं उसी फील्ड में 4 चांद लगा सकेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा आपके पास में हथियार मनसा सेवा का होना बहुत जरूरी है, स्वयं की सेफ्टी के लिए, दूसरों की सेफ्टी के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए मनसा सेवा करने का हथियार आपके पास होना बहुत जरूरी है, तभी आप सेवा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सेवा में बहुत अच्छी तरह से, बस हमारे जीवन के 2 ही पहलू है, सेवा और सेवा, सेवा और सेवा। तीसरी बात हमें नजर ही नहीं आती है, बस सेवा और सेवा, सेवा सेवा। भाई इनकम चाहते हैं आप लोग? इनकम कमाना चाहते हैं? इनकम चाहते हैं करना? बाबा परमधाम में बैठा है, कहता है इनकम कम इन, खजाने चाहते हैं ना? इनकम कम इन, प्लीज मेरे साथ बैठो, जितना चाहे लूटो। इन कम कम इन, और कमाई चाहते हैं? कम आई। बाबा मैं आई गई आपके पास, कमाई कमाई आपकी। तो इनकम चाहते हैं तो वो स्थान है इनकम करने का, जितना चाहे आप भरो। तो जो भी शब्द बने हैं वो सारे यथार्थ अर्थ सहित बने हैं, संस्कृत के जो भी शब्द बने हैं वो अर्थ सहित बने हैं, समझा। इसलिए बाबा के पास जाकर हम बैठ जाएं, बाजू में बैठ जाएं और जितना चाहे लूटते रहें और लुटाते रहें, ठीक है। कोई बात तो क्लियर होने की है ही नहीं ना, सब क्लियर हो गया योग के बारे में? और तो कोई प्रश्न नहीं ना? किसी ने मुझे प्रश्न पूछा, भाई परम धाम में बाबा को याद तो करते हैं, कैसे समझे हमारे विकर्म विकर्म भस्म हो रहे या नहीं, कैसे समझे, क्या उसका प्रमाण है? सब पहली बात तो मेरी याद उस तक पहुंचती है या नहीं है? इतना दूर परम धाम है, कौन से कोने में बाबा बैठा है, मैं तो 2 साल के बाबा की बच्ची हूँ, पुरानों की याद तो पहुंचती होगी, मेरी याद पहुंचती है या नहीं पता नहीं, पहुंचती है? पहुंचती है, ऐसे ही मन के लड्डू खाते हैं, पहुंचती है? पता नहीं पहुंचती, कैसी पहुंचती है? पहुंचती है तो उसका प्रमाण क्या है? प्यार से पर ठीक है, मान लेते हैं जैसा आप कहते हैं तो। देखो माँ की गोदी में बच्चा 2 मास का बच्चा है, बिना मतलब रो रहा है, बिना मतलब हंस रहा है, कितना करते हैं वो रुकता ही नहीं है। कारण क्या है भाई, क्यों रो रहा है, क्यों हंस रहा है? जहां वो बूढ़ा था उसके जो संबंधी थे मरने के बाद जब बहुत दुख से याद करते हैं तो वो बच्चे के पास पहुंचते हैं और रोना शुरू करते हैं। जब वो बहुत खुशी से शांति से वाइब्रेशन फैलाते हैं तो वो बच्चा खुशी बहुत खुशी में झूमता रहता है। देखो वाइब्रेशन कैसे है, टेलीपैथी कैसी है। तो जब भी बाबा को याद करते हैं हमारा हर सेकंड बाबा पर ठका करता है, लेकिन जितना प्रेम की मात्रा याद संकल्प में होगी उतनी गहरी रिएक्शन बाबा पर होती है, उतना गहरा रिस्पांस बाबा हमें देते हैं। उसका ज्वलंत उदाहरण है, बाबा कहते हैं बांधेली बच्चियां जो हैं वो उनके पति उनको मारते हैं, बच्चे उनके डांटते हैं, लेकिन वो बहुत मुझे याद करते हैं, तड़प तड़प की याद करती है, तो उनकी तड़पती हुई याद मेरे पास पहुंचती है, मेरे आंखों में आंसू आते हैं, बाबा की आंखों में आंसू आते हैं। देखो मेरी बच्ची साकार ये दुनिया में कितना सहन कर रही है, कितना सितम सहन कर रही है, बाबा उसको सकार देते हैं, स्नेह देते हैं और शक्ति देते हैं। ऐसी वो याद करते हैं, हे भगवान देख तुम्हारे लिए कितनी मैं सहन कर रही हूं,